چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے،
عید کا دن ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، عید ملن پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مزے مزے کی گفتگو ہوگی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پریویس ایپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بھی ہمارا ٹاپک خوشی کیسے حاصل کی جائے، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، اور خوشی میں دوست کا کیا کردار ہے اور دوست کا ہماری خوشیوں میں کیا کردار ہو سکتا ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے ٹپس بھی معلوم ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم خوشی حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی آخر طریقہ کار بھی تو ہوتا ہوگا۔
انسانی وجود جو ہے نا، وہ کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ کچھ مالی تقاضے جڑے ہوئے ہیں، کچھ سوشل تقاضے جڑے ہوتے ہیں۔ انسان ہر ہر شے کو اپنے ٹارگیٹس میں لے کے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے بدن کو جو غذا چاہیے ہوتی نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری زندگی صرف ایک ہی شے کھاتے رہیں اور ہمارے بدن کو جتنی بھی عناصر کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے مل جائیں۔ ہمارے بدن کو وٹامن اے بھی چاہیے، بی بھی چاہیے، سی بھی چاہیے، ڈی بھی چاہیے، کیلشیم بھی چاہیے، میگنیشیم بھی چاہیے، آئرن بھی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایک اعتدال میں چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ جہاں پر بھی انسان کے اندر ان والی چیزوں میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔
صحیح،
ٹھیک ہے۔ ایسا ہی خوشی کا معاملہ ایز اٹ از یہی ہے کہ خوشی کا جو یوں کہہ لیں، اگر آپ اسے ایک جسم شمار کریں تو خوشی کے جسم کے لیے بھی صرف ایک فیکٹر جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا نارملی۔
ایسا
اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ وہ بہت سی چیزیں جب وہ پوری کرتا ہے تو اس کو پوری خوشی ملتی ہے،
صحیح،
ورنہ اسے یوں پارشلی خوشی ملتی ہے کہ وہ ایک ون سائیڈڈ یا ایک جز ہوتا ہے اس خوشی کا۔ ہماری خوشی کا ایک حصہ اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہمارے فیملی تعلقات کیسے۔
صحیح،
ہماری خوشی کا ایک حصہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے کتنے دوست ہیں اور ان سے ہمارا ریلیشن کیسا ہے۔
صحیح،
ہماری خوشی کا ایک پورشن یہ بھی ہے کہ ہماری مالی حالت کیسی۔ ہماری خوشی میں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے کہ ہماری جسمانی حالت و کیفیت کیسی۔
صحیح،
ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تو پھر آپ کو ایک پراپر خوشی ملے گی، ایک مکمل خوشی ملے گی۔ جس انسان کا دنیا میں کوئی دوست نہ ہو،
صحیح،
وہ مال کمانے کے اندر جتنا مرضی کما لے، تقریباً ناممکن ہے کہ اسے خوشی مل جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے انس سے بنا ہے، لفظ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے اسے کسی سے انسیت ہو، وہ مانوس ہو لوگوں کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہو، وہ ان کے ساتھ ملے جلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ایک اس کی اچھے دوستوں کی گیدرنگ چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ صرف دوست کافی نہیں ہے، اسے انسان کو فیملی بھی چاہیے ہوتی۔ جو آدمی فیملی نہیں یعنی کہ بناتا اور وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور آوارگی اور یہ وہ سب کے اندر زندگی گزار دوں گا، میں اسی میں خوش ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دوست جو ہے نا جھڑ جائیں گے۔
ایسا ہے،
اور آدمی جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا کہ یار کاش میں وقت کے اوپر جو ہے نا اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ بناتا اور میں اس کے ساتھ چلتا تو مجھے خوشی ملتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک آدمی دوستی یاری میں اور گھر داری کے اندر تو بہت لگا ہوا ہے اور مالی حالت کا ستیاناش ہے، تو آپ کیا سمجھتے خوش ہو سکتا ہے؟
بہت مشکل۔
بیسیوں آسائشیں اور سہولیات زندگی جو ہے وہ مال کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک آدمی کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور وہ ہے پرلے درجے کا بیمار مریض، ना वो ढंग से खा सकता है, ना वो किसी से प्रॉपर बात कर सकता है, मर्ज की वजह से वो हर वक्त आही मर रहा है, तो उसको जिस्मानी भी चाहिए। बास लोगों को आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें उनकी पूरी होती
जी,
फिर भी वो बेसुकून होते हैं, और बल्कि शायद सबसे ज्यादा दवाइयां खाने वाले यही होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये अपने जिस्मानी तकाजे तो पूरे कर लेते हैं
सही,
लेकिन अपने जो कल्बी रूहानी तकाजे वो नहीं पूरे कर पाते,
जो असल खुशी।
अल्लाह ताला ने इंसान में रूह, कल्ब, दिमाग ये जो रखा है ना, इसका जो इत्मीनान है और इसकी जो गिजा है वो कुछ और ही है, वो अल्लाह से ताल्लुक और वो अल्लाह ताला की तरफ लगन और वो दीनी चीजें और वो अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल, ये वाला ऐसा फैक्टर होता है कि ये खुशी सिर्फ इसी से मिलेगी। बाकी आप दुनिया जहान की चीजें कर ले, आपको ये खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि ये ऐसी मेन चीज है कि शायद, बल्कि शायद नहीं, बहुत सारों के बारे में ये बाकायदा यदि कि किताबें मिल जाएंगी कि और कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला उनका जो पोर्शन है दिलो दिमाग का, अकल का, सोच का, रूह का, ये स्ट्रांग है तो वो ऑलवेज खुश हैं।
सुभान अल्लाह,
वो ऑलवेज खुश हैं। अभी मैंने कल परसों किसी का एक फरमान पढ़ा, किसी बुजुर्ग का फरमान था, उन्होंने फरमाया कि सबसे ज्यादा खुश वो है जो अल्लाह की खुशी में खुश है।
अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह,
फरमाया सबसे ज्यादा खुश वो है जो अल्लाह की खुशी में खुश है।
वाह,
कि खुदा ने जैसे रखा मैं खुश हूँ।
सुभान अल्लाह,
इससे ज्यादा कोई बंदा खुश हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता। जाहिर है इस कैफियत से आगे क्या हो,
इससे, बल्कि वो एक बुजुर्ग ने फरमाया, उन्होंने ऐसा जुमला कहा कि दुनिया जो है वो मेरी मेरी मर्जी से चल रही है, सारी दुनिया मेरी मर्जी से चल रही है। किसी ने कहा हजरत ये कैसी बात कर दी आपने, सारी दुनिया आपकी मर्जी कैसे चल सकती है? फरमाया कि मैंने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना कर दिया।
अल्लाह अकबर,
तो अब रब की मर्जी मेरी मर्जी है और रब की मर्जी से सारी कायनात चल रही है, तो कायनात मेरी मर्जी से चल रही है। तो ये क्या है कि जिसने अपना ये रूहानी वाला जो पहलू है ये मजबूत रखा ना, यू समझ लें कि वो शायद बड़ी से बड़ी मुसीबत और तकलीफ के अंदर भी वो अपने आप को खुश रखने में कामयाब हो जाता है। तो ज्यादा खुशी का मजमू तौर पे जो ना एक यूं समझ लें कि कई अनासिर के मजमुए का नाम है। और इंसान को इन सब चीजों को अपनी अपनी जगह पूरा करना चाहिए। जिस्मानी तकाजों के अंदर भी बाज़ औक़ात क्या होता है, उसको भी बाज़ लोग पूरे नहीं करते, और उस वजह से भी यूं समझ रहे कि एक मरियलपन का, एक सुस्ती कहरी का और एक परेशानी का शिकार रहते हैं। किसी की नींद पूरी नहीं होगी ना अगर, तो आप उसके खुश रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
ऐसे
ठीक है, नींद पूरी नहीं होगी तो वो डाउन ही रहेगा, वो उसका एनर्जी लेवल जो है वो नीचे ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह किसी आदमी की गिजा पूरी नहीं है, उसकी खुराक पूरी नहीं है कि वो मिसाल के तौर पर अला बला तो बहुत कुछ खा लेता है, लेकिन जितनी उसको कैलोरीज चाहिए और जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें चाहिए वो नहीं है, तो इस आदमी का भी जो ना वो खुश रहना, फ्रेश रहना, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसमें एक बाकायदा जो है एक डिपार्टमेंट है उनका, जिसका काम ही खुशी पर काम करना है,
इसी टॉपिक पे,
इसी टॉपिक पे काम करते हैं। समझ रहे कि साइकोलॉजी का एक वो होगी ना ब्रांच,
डिपार्टमेंट हो,
और उसके चंद एक प्रोफेसर हैं जो इस तौर पे बड़े मशहूर हैं कि जनाब इनको खुशी का गुरु कहा जाता है।
सही,
यानी कि वो खुशियों के फॉर्मूले ये वो करते हैं। अच्छा, लेकिन वो है क्या बेसिकली, वो पांच छह बातें ही हैं जिनके अंदर खुशी दायर कर रही होती है।
सही,
उसमें उन्होंने क्या कहा, भाई नींद पूरी करें, गिजा पूरी करें, अपनी फैमिली को वक्त दें और अच्छे ताल्लुकात रखें, अपने दोस्तों को वक्त दें और अच्छे ताल्लुकात रखें, और थोड़ा सा अपने आप को फितरत के करीब करें।
सुभान,
जो नेचुरल चीजें ना, पहाड़, दरिया, समंदर, बागात और सब्जा, ग्रीनरी, तो ये वाली जो नेचर की चीजें हैं, जितना बंदा अपने आप को इनके करीब करता है तो उसकी खुशी जो है वो उतनी ज्यादा जो है वो बढ़ती जाती है।
सुभान अल्लाह,
तो फैमिली, दोस्त, नेचर, आराम, गिजा, अगर ये वाली चीजें इंसान अपनी पूरी करे तो यूं समझ रहे हैं कि मजमूनी तौर पे जो है वो खुश रहता है। इसके बाद भी अगर कोई कहना है कि मुझे खुशी नहीं है तो फिर उसके इलाज की जरूरत होती है। उसकी वजह ये होती है कि बाहर से परेशान होने की बीमारी होती है।
वाह,
आपने
ये देखा, एक अलग पहलू आपने छेद दिया
ना,
ये कई लोग इसी में खुश होते हैं कि हम ना खुश हैं।
हाँ, वो बताते इतना ज्यादा है
कि जब भी मिले ना बहुत टेंशन है आजकल
जी,
ठीक है ना, ये जुमला इतने बड़ी तादाद का मिलेगा तो बहुत टेंशन है आजकल, बहुत हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है।
तो ऐसे को जानता हूँ सर कि उसके बारे में उसकी फैमिली मेंबर्स का, खानदान वालों का ये गालिब गुमान है सबका कि अगर इसकी एक बीमारी के इलाज हो जाता है ना तो ये सोचता है कि यार मैं बीमार क्यों नहीं, वो अपने ऊपर कोई और बीमारी नाफिस करता है और वाकई बीमार हो जाता है और फिर उसके अंदर डेढ़ दो साल गुजारता है। लो भाई हम ये यानी कि उसकी ऐसी
सही होने पे कहता होगा व्हाट द हेल
कहाँ फंस गया। तो बालों की नेचर ऐसा, वो खुशी अच्छा अच्छी सैलरी मिले तब भी वो नाराज हैं, ना मिले तब भी नाराज हैं, कोई अचीवमेंट हुई तब भी उनका मूड ऑफ है। तो बाजों का आपने वजह फरमाया कि उनको खुश रहना खुश होना आता ही नहीं है बल्कि एलर्जी होती है। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जिंदगी में, मुझे भी दो चार चेहरे नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके साथ ऐसा हो गया कि कोई अच्छी बात शेयर करते हुए ये खौफ होता है कि यार इसके अंदर भी ना कीड़ा निकालेगा। अगर उसके सामने कोई भी अच्छी बात करे, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर ले ओवरऑल, ठीक है मसाइल हैं सब चीजें हैं, लेकिन बाद लोग ऐसे अजीबो गरीब घड़े हुए हैं इस बीमारी के अंदर कि उनको कहना कि पाकिस्तान भी अच्छा भी हुआ तो अच्छा आप कह रहे हो लेकिन ये भी तो है इसके अंदर। तो बंदा कहते हैं यार इससे बंदा शेयर ही ना करे तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन का भी एक मसला होता है लोगों के साथ ना
जी,
कि वो हर अच्छी बात के साथ भी लेकिन जरूर जुड़ा होता है। वो एक मशहूर सहाफी के बारे में, उसके पास कोई आया ना उससे आते साथ ही, जैसे आजकल का हमारा टॉपिक लोगों का आमतौर पर ये पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, तो उससे भी किसी आगे यही कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। उसने कहा तुमने खराब किए? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं किए, तुम सही कर लोगे? उसने कहा नहीं मैं सही भी नहीं कर सकता, तो मैं चाय पियो फिर आराम से। तो बात यह है कि मुल्क के लिए सोचना और कुछ करना बहुत अच्छी चीज़ है, जबकि उसके कुछ असरात भी नजर आए। सिर्फ इस डिस्कशन को एक बीमारी के तौर पे ओढ़ लेना
जी,
कि अब जो है ना वो हम कंबल को छोड़े और कंबल हमें ना छोड़े
जी,
ये वाली हालत जो है ना ये ठीक नहीं है। एक आदमी जो ना पूरी दुनिया में घूम फिर के आया, उसके बाद पाकिस्तान में उसने रिहाइश कर ली, था पाकिस्तानी लेकिन 25-30 साल दूसरे मुल्कों में रह के आया, तो उसको यहाँ 15 साल जब गुजर गए ना तो किसी ने कहा कि आपने पाकिस्तान में लोगों में क्या कमी महसूस की
जी?
उसने कहा यार दो कमी है, एक तो हमारे लोगों के पास गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं है।
अच्छा,
गुफ्तगू का मौजू नहीं, इनकी गुफ्तगू का मौजू नेगेटिव ही होता है, जबकि नेगेटिव मौजू मौजू नहीं शुमार किया जाता। आप पॉजिटिव बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हेल्दी डिस्कशन, ठीक है ना, आप नेगेटिव बातें करते हैं तो अनहेल्दी डिस्कशन है, तो वो कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना, वो डिस्कशन नहीं है, वो डिप्रेशन है। दूसरा उसने कहा यार हमारे लोगों को खुश होना नहीं आता, इनकी खुशी जो है वो उस शय के साथ वाबस्ता है कि जो कभी भी हासिल नहीं हो,
मुअल्लक है।
हाँ यानी कि ज्यादा ही मुअल्लक है, ठीक है, वो अगली से अगली। अभी वो एक आदमी ने एक मिसाल लिखी कि किसी बुजुर्ग के बारे में मशहूर था कि यार ये जो दुआ करें कबूल हो जाती है, या ये इशारा करे तो चीज सोने की बन जाती है। तो एक बंदे को पता चला उसके हालात खराब थे, तो उसने जाके कहा कि बुजुर्गों मैं बड़ा परेशान हूँ, माली हालात बड़े खराब है, मेहरबानी करें थोड़ी करम नवाजी हो जाए। तो बेटा क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे ना ये बच्ची की शादी है या ऐसा कुछ है तो मुझे पैसे चाहिए, तो अगर ये पत्थर अगर आप सोने का बना देना तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने उंगली से इशारा किया, पत्थर सोने का बन गया, वो बड़ा खुश ना। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। अब बुजुर्ग जाने लगे तो लगा पीछे बंदा आ रहा है, उन्होंने देखा तो वही बंदा खड़ा। उसने कहा कि भाई अब क्या हुआ? उसने कहा साईं शादी वगैरह तो हो जाएगी लेकिन और बहुत से काम बाकी हैं, तो अगर चंद और पत्थर भी बना दे तो आपका क्या जाता है?
आपने तो इशारा ही करना है।
उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने फिर इशारा किया तो और भी काफी सारे पत्थर बना दिए सोने के, अब खुश रहना चाहिए। वो जाने लगे, थोड़े आगे गए तो लगा फिर पीछे को बंदा आ रहा, मुड़ के देखा तो वही। उससे पूछे अब क्या हुआ? उसने कहा साईं क्या जाता है आपका,
थोड़े और बना दे,
अगर ये सारा इलाका ही सोने का बना दे तो अगरचे जरूरत से ज्यादा लेकिन मजा तो आएगा ना। उन्होंने इशारा किया, वो पूरा सारा जमीन जितनी थी वहां पर वो सारी सोने की बन गई। अब ये तो इतनी थी कि मुल्क ही चल जाए उससे, बंदा क्या चलना, मुल्क भी चल सकता। उसके बाद वो बुजुर्ग चले थोड़ा सा आगे गए तो फिर वही बंदा पीछे, سے پوچھا بھائی اب کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کی انگلی مل سکتی ہے.
صحیح کہ باور پیچھے کیوں آ رہا ہوں میں.
ٹھیک ہے, آپ کی انگلی مل سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق انگلی کے ساتھ ہے, ہمارا اطمینان سکون سارا اس انگلی پہ موقوف ہے. اب یہ کاٹ کے بھی ہمیں دے دیں گے نا تب ہم جا کے خوش ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ مطمئن ہو جائیں, آپ کو خوشی مل جائے گی. اور اسی کا دوسرا نام ہے قناعت. اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت مال نہیں ہے, قناعت ہے. حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا مالداری, فرمایا کہ غنا مال کی نہیں ہوتی, غنا قلب کی ہوتی ہے. دل بندے کا مالدار ہو جائے تو پھر مال کا مالدار ہونا ضروری نہیں. اور اگر دل غنی نہیں ہے تو مال جتنا مرضی جمع ہو جائے معاملہ وہی رہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دو ہونی چاہیے. اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی. تو معاملہ یہ ہے, لہذا قناعت جو ہے نا, قناعت بڑی ضروری ہے. قناعت پہ بندہ آ جائے نا تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کی خوشیاں یوں لیول پہ آ جاتی. ایک کسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے, اس نے کہا خوشی چاہیے تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو. جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو, اور اگر اپنی پسند کو حاصل نہیں کر سکتے تو جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو.
سبحان اللہ, بات ختم.
ٹھیک ہے, یہ ہے خوشی کا سب سے مین فارمولا.
ماشاءاللہ,
کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر پسند کی شے ہماری جیب میں ہونی چاہیے, تو پسند تو ہمیں ساری دنیا ہے. ہمیں جو ہے ہر ہر یعنی شعبے کے اندر ایک نہیں ایک لاکھ چیزیں پسند ہے, اور اس ایک لاکھ کے بعد بھی انگلی چاہیے کہ بھائی اس کی انگلی کٹ کے ملے گی نا تو ہی میں پورا خوش ہوں گا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ذرا محدود کر لے اور قناعت پہ آ جائے تو ہمیں بڑی آسانی سے خوشی مل سکتی ہے. تو جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو پسند کر. مثال کے طور پہ اگر میں سوچوں نا تو ایٹ اس وقت اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے, جیسے لوگوں کو بیسیں ہوتی ہیں نا, مجھے کوئی بھی نہیں. لیکن بالفرض اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا 70 بیماریوں سے وہ محفوظ بھی تو ہے. تو جس ایک بیماری کو یاد کر رہا ہے اس کی جگہ وہ جو 70 سے محفوظ ہے اسے یاد کر لے. اچھا, ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا گزارا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بھوکے نہیں مر رہا, اب وہ خواب کے اندر اربوں خربوں ہی دیکھتا رہے تو سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں. اگر اس پہ قناعت کر لے کہ یار جتنا میرے پاس ہے ٹھیک ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ شادی میں منصب کے اندر ہوتا ہے. تو اگر بندے کو جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لے تو اس کی خوشیوں کا جو یوں کہہ لے کہ دروازہ جو ہے نا وہ کھل.
ماشاءاللہ بہت خوب. اور یہ سارا ٹاپک ڈسکس کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس عجیب و غریب قسم کے ماحول کے اندر اور کچھ ریئلٹی بھی ہے, اس کا ہم بالکل انکار نہیں کریں گے کہ مسائل ہیں, دشواریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن بہرحال اگر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, جو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس پر ہم عمل کریں گے تو اسی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی کنڈیشن میں ہی ہم پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. عبدالواجد بھی میں چاہوں گا کہ دوستوں کا تذکرہ ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ سیلیبریشن میں, خوشی کے حصول میں یا خوشی کو مزید انجوائے کرنے میں, اس کو مزید محسوس کرنے میں دوستوں کا کردار کتنا ہے؟ اور یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑا اس کو بھی الیبوریٹ کریں کہ دوست کس طرح کے ہم بنائیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش رہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر وہ ہماری اس چیز میں ہی اضافے کا باعث ہوں.
دوستوں کا جہاں تک تعلق ہے اسد بھائی, تو دوست تو زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کا زندگی میں ایک کردار ہوتا ہے,
بے شک.
اسی طریقے سے آپ کی جو نیوکلس فیملی ہوتی ہے, وائف ہے, بچے ہیں, ان کا ایک کردار ہے. اسی طریقے سے قدرت نے ایک کردار یا ایک سپیس جو ہے وہ دوستوں کے لیے رکھا ہے. آپ مطلب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, وہ دنیاوی طور پہ بڑے ہوں یا دینی طور پہ بڑے ہوں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں دوست تھے اور ان دوستوں کا بہت بڑا کردار تھا.
صحیح,
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کے جو سب سے قریبی دوست ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے, یہ جو ان کی خدمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اس سے ہر ایک واقف ہے. تو دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر یہ کہ جہاں دوست خوشی میں کام آتے ہیں وہاں غم میں بھی دوستوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے.
صحیح,
تو دوست ہونے چاہیے. لیکن یہ جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ دوست کیسے ہونے چاہیے,
جی
یہ دوست بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے.
صحیح,
کہ اگر دوست اچھا ہے تو پھر وہ دوست ہے, اور اگر آپ کا دوست ہے اور وہ کردار کے لحاظ سے برا ہے, عمل کے لحاظ سے برا ہے, تو وہ دوست نہیں ہے, بلکہ بزرگوں نے تو اس کو سانپ کہا ہے.
جی,
کہ اگر آپ کا جو دوست اچھا ہے تو وہ آپ کو بھی اچھا بنا دے گا, لیکن اگر آپ کا دوست برا ہے تو وہ سانپ ہے اور آپ کو بھی سانپ بنا دے گا.
اسس کیسے کریں, بڑا مشکل ہے. اب مثال ہے, ایک شخص ہے, تمام ایجز کو ہی لیتے ہیں, زیادہ تر بچپن میں دوست بناتے ہیں, اسکول لائف کے اندر دوست ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگ قریب آتے ہیں, جہاں پر ہم بزنس کرتے ہیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ قریب آتے ہیں. تو ایک عمومی رجحان تو یہی ہے کہ جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے, یا کسی بھی طرح سے میرا تھوڑا قربت ہو گئی تو وہی میرا دوست ہے. تو یہ جو اسیس کرنا ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں آئے گا یا واقعی اللہ کی نعمت جو دوستی ہے اس شکل میں آئے گا, تو ہاؤ ٹو اسیس, کیا کریں؟
بہت آسان ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ شریعت ہے.
صحیح,
یعنی آپ جس کو دوست بنا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے. تو جتنا وہ شریعت کا زیادہ پابند ہوگا اتنا ہی وہ آپ کے لیے ایک اچھا دوست ثابت ہوگا. تو آپ شرعی پیمانوں پہ لوگوں کو ناپتے چلے جائیں تو وہ آپ کو معلوم چل جائے گا کہ یہ دوست بنائے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت قریبی دوست تھے, اور صرف مطلب ان کے اندر جو کمی دیکھی تو وہ یہ دیکھی کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھے, وہ برے اعمال میں مبتلا تھے, کوئی ڈرنکنگ کر رہا ہے, اس کو سموکنگ کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اور غلط محفلوں میں بیٹھا ہے. تو یہ زندگی میں دیکھا کہ اگر اچھے لوگ بھی اس کے قریب ہوئے نا تو اللہ معاف فرمائے, کبھی ایسا ہوا کہ وہ اچھے لوگ بھی اس برے کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے برے بن گئے. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کالج کے دنوں کا, کہ ایک میرے کلاس فیلو تھے اور بڑے جولی تھے اور بڑے ہسمکھ تھے, بڑا اچھا وقت گزرتا تھا. تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کالج میں ایک لڑکوں کا گروہ ایسا تھا جو بری سرگرمیوں میں ملوث تھے.
صحیح,
برے کاموں میں ملوث تھے, بری جگہوں پہ جاتے تھے, لڑائی مار کٹائی اور غنڈا گردی جو ہے وہ ان کی عادت تھی. تو وہ جو میرے دوست تھے وہ جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. اب ہوا یہ کہ ایک دن ہمیں پتا چلا کہ یار اس کا تو انتقال ہو گیا, he has been murdered, یعنی اس کو قتل کر دیا گیا.
اچھا,
تھوڑی سی پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ آدمی تو شریف تھا لیکن یہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مارا گیا.
اللہ,
ان لوگوں کی دشمنی کسی اور گروہ کے ساتھ تھی. ہاں جی, تو وہ گروہ جو تھا وہ اس گروہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, تو انہیں تو اور کوئی ٹارگیٹ نہیں ملا, یہ ہمارے دوست ملے تو انہوں نے ان کو ہی مار دیا.
صحیح, جو آپ نے ابھی بات کی نا یہ کہ ملنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں نا, تو ہم دوست کا غیر دوست کا کیسے فرق کریں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے, وہ انگلش کا ایک لفظ ہے نا ایکوائنٹنس, اور ایک ہے فرینڈ.
جی,
ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شناسا اور ایک ہوتا ہے دوست.
بہت خوب,
اچھا, یہ ایک بڑا واضح سا فرق ہوتا ہے. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, یہ تقریباً وہی چیز ہے, وہ تو خیر کسی اور مفہوم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ملتے تو ہزاروں سے ہیں.
صحیح,
لیکن ہزاروں ہمارے دوست نہیں ہوتے, وہ ہمارے شناسا ہوتے, ہم جان پہچان ہے ہماری ان کے ساتھ.
صحیح,
ٹھیک ہے, تو کسی سے جان پہچان ہونا یہ اور چیز ہے, کسی سے دوستی ہونا اور چیز ہے. جان پہچان تو جناب وہ ہم جس سبزی والے سے سبزی خریدتے ہیں اسے بھی جان پہچان ہے, لیکن ہمارا دوست تھوڑی ہوتا ہے وہ.
صحیح,
ہم ہزار چیزیں خریدتے ہیں اور ان سے ہماری الیکس لیک ہوتی ہے, لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہوتا. دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان ذرا اپنی گیدرنگ کرتا ہے, جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یہ بیسیکلی دوست ان کو کہا جاتا ہے. اچھا, آج کے زمانے میں اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ آپ ذرا ڈیجیٹل اٹھنا بیٹھنا شامل کر لیں.
صحیح,
کہ وہ بھی ذرا اسی کے اندر ہی آتا ہے نا, ڈیجیٹل فرینڈشپ جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے कि एक आदमी अमेरिका में है, ये पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन दोनों का आपस के अंदर रابطہ इतना है कि फारिग होते तो आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, तो ये भी दोस्ती कहलाती है। तो दोस्त का लफ्ज और किसी से जान पहचान होने वाला, ये लफ्ज है ना, ये दोनों जुदा है। तो लिहाजा जो जान पहचान वाले हैं इनका मामला तो वैसे ही यूं कह लें कि जरूरत की हद तक होता है, बंदा जरूरत की हद तक मिलता है, या कभी आमना सामना हो जाता है तो अलग सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर तो शायद कोई इतनी ज्यादा कोई खत खींचने की जरूरत नहीं होती, सिवाय इसके कि उसमें कोई शरी हुक्म हो तो बंदा उसका लिहाज करे। बाकी रहा दोस्त का ताल्लुक, दोस्त जो बनाए जाते हैं वो इंसान जो है ना अपने कई, यूं समझ लें कि कई मकासिद के लिए बनाता है। बाज़ों का दोस्त बनाता है कि उसकी सोहबत से इसको सीखने को मिलेगा, ठीक, इसे कहते हैं लर्निंग। बाज़ों का बंदा इसलिए दोस्त बनाता है कि इससे जो सीखा हुआ है ना वो जाया करवाना है, इसे कहते हैं डी लर्निंग।
सही,
ठीक है, इसे कहते हैं डी लर्निंग। इसकी भी जरूरत होती बाज़ों का।
अच्छा, हाँ, ये भी किसी पहलू में पॉजिटिव है,
ये भी किसी पहलू में पॉजिटिव है। एक है लर्निंग, एक है डी लर्निंग और एक है री लर्निंग। ये तीन स्टेप है।
सही,
होता यह है कि सीखने में तो हमने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा।
सही, ऐसा ही,
लेकिन वो सीखना किसी बेस पर नहीं था या सही बेस पर नहीं था, तो गलत चीजें भी सीखनी।
सही,
ठीक है। हमें किसी ने कहा कि यार लोगों से जो मेल मुलाकात है ना, थोड़ा सा जरा ना अकड़ में रहना चाहिए, हमारे को लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। हम ऐसे ही लोगों के पास बैठे थे और हमने यही सीखा। अब इस सीखे हुए की डी लर्निंग की जरूरत है, इस लर्निंग की डी लर्निंग की जरूरत है, उस सीखे हुए को मिटाएं। तो वो जो मैंने दूसरी बात कही थी ना कि कुछ वो चाहिए होते हैं कि वो जो लर्निंग है उसको डी लर्न करें।
सही,
तो पहले उस वाले स्लेट को साफ करें, उस वाली तख्ती को साफ करें, और उसके बाद अब फिर नया सीखना शुरू करें।
सही,
तो आदमी कभी तो लर्निंग के लिए दोस्ती करता है कि इंसान को सीखना चाहता है, कभी वक्त गुजारी के लिए करता है, कभी खुश तबई के लिए करता है, कभी जो है अपने खुशी गमी में कोई साथ बैठने के लिए करता है कि ऐसा का होना, उसका होना चाहिए जो उसके साथ बैठे। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना कि दोस्ती जो है वो इंसान की फितरत में है, इंसान को जैसे अपनी फैमिली की जरूरत पड़ती है इसी तरह दोस्तों की जरूरत पड़ती है। बल्कि एक हदीस मुबारक भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि रास्तों पर ना बैठा करो। सहाबा किराम रास्तों में बैठते, जो गलियां थी ना तो रास्ते में बैठते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्तों में ना बैठा करो। तो सहाबा किराम ने आगे से जवाब दिया कि या रसूलल्लाह इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है।
अल्लाह अकबर, सोशलाइजेशन,
फरमाया इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर रास्ते के हुकूक का ख्याल रखा करो।
अल्लाह अकबर,
ये हदीस मुबारक, और ये हदीस अपने अंदर ये दोस्ती के हवाले से बहुत से असबाक रखती है कि इसमें यह भी पता चला कि दोस्ती इंसानी फितरत का तकाजा है।
सही,
और इसमें यह भी पता चला कि दोस्ती है तो उसमें फिर गैदरिंग भी होगी।
सही,
और तीसरी बात यह भी है कि उस दोस्ती की वजह से कोई खिलाफ शरा चीज ना हो।
अल्लाह,
अब उसमें दो चीजें आ गई, एक तो खुद गुफ्तगू के अंदर जो है वो खिलाफ शरा चीज ना हो, गीबत ना हो, तंज और इस्तेहजा ना हो, किसी का मजाक उड़ाना ना हो, बोहतान ना हो, गाली का ना हो, जैसे बाज़ों के ना बात बात में गाली, तो ये वाली गैदरिंग ना हो। अच्छा, इसी तरह उस सोहबत के बुरे असरात ना हो, जैसे अभी उन्होंने बात की कि बुरी सोहबत का असर इंसान को कहां तक ले जाता है। तो फरमाया कि अल मरउ अला दीनी खलील ही फलयंज़ुर इला मन युखालिल, फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके तरीके पर होता है, उसकी सीरत पे होता है, उसकी तर्ज जिंदगी पर होता है, तो इंसान को देख लेना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती करता है। ये हदीस मुबारक है। लिहाजा दोस्त बनाने के अंदर एक तो इस पहलू का ख्याल रखना जरूरी है कि ये उसको जरर ना दे। ये जो इन्होंने जैसे बात की ना, सांप की बात की है
जी,
सांप होना कई एतबार से हो सकता है, सांप होना दिन के एतबार से भी हो सकता है कि किसी ऐसे को दोस्त बना लिया कि जो उसके दीन को डस लेगा, उसके दिलो दिमाग के अंदर गुमराह को अकीदे डाल देगा, उसका अकीदा बिगाड़ देगा, उसे जो है वो दीन के मामला के अंदर जरी कर देगा। तो ये वो सांप है जिसने दीन को डसा। अच्छा, वो भी दोस्त होते हैं, यदि दोस्त हो सकते हैं कि जो इंसान के माल पे नजर रखें, तो उनकी दोस्ती माल की वजह से,
तो अब हो सकता है कि वो उसके माल की वजह से दोस्ती और उसके माल ही को जब वो बर्बाद कर दें। अच्छा कई वो भी होते हैं कि जो इज्जत और आबरू के दुश्मन होते हैं, ज़ाहरी एतबार से दोस्त है, तो अब किसी का किरदार देखना, उसकी गुफ्तगू देखना, उसकी नज़र और नज़रों की खयानत को जांचना, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हदीस मुबारक के अंदर जो अल्फाज है ना वो बड़े शानदार हैं, फरमाया कि आदमी देख ले कि वो किसको दोस्त बना रहा है। और ये दोस्ती का एक पूरा चैप्टर है कीमे सादत में और इहयाल उलूम के अंदर, जो माशरत का बाब है उसमें दोस्ती के आदाब के ऊपर थोड़ा बहुत नहीं है, बीसियों सफात इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे हैं कि दोस्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके ये अच्छा, फिर उसके हुकूक का मामला भी है कि दोस्त है तो उसका ये है, यानी दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि बस सलाम दुआ ली है और किसी परेशानी के अंदर जो है ना बोला भाई ठीक है दोस्ती पूरी होगी हमारी, ये नहीं है। तो वो एक पूरा उसका चैप्टर है। अब उस लेवल की दोस्ती हो तो वो एक और चीज़ हो जाती है, और वो आ जाती है अलहुब्बुलिल्लाह के अंदर कि अल्लाह की खातिर किसी को दोस्त बनाना, अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करना, ये बताते खुद इतनी बड़ी चीज़ है कि फरमाया कि जो शख्स किसी से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, अगर एक मशरिक में है दूसरा मगरिब में है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा।
अल्लाह।
अच्छा इसी तरह फरमाया कि जब कोई बंदा अपने घर से किसी दोस्त से मिलने के लिए निकलता है जिससे वो दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए करता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये भी है, तो ये वो है कि जो दीनी दोस्त है और जिससे दोस्ती अल्लाह ताला की रजा के लिए। लेकिन अगर दुनियावी दोस्त भी हो तो कम से कम दोस्त की जो यू कह लें कि कंडीशंस होनी चाहिए वो ये है कि वो दोस्त आपके दीन जान माल आबरू को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, और इससे अगला मरहला होगा कि इन चीजों को फायदा पहुंचाने वाला।
वाह,
तो ये स्टेप बाय स्टेप
माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त जो है वो उसूल कह सकते हैं कि हमें बताए जा रहे हैं, जा रहे कि फिर हर शख्स की अपनी कैफियत जुदा है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि खुशी में बंदा दोस्तों के साथ शेयरिंग करता है, यानी कि मुझे अगर कोई खुशी हासिल होगी तो सबसे पहले मैं किसको बताऊंगा, माँ बाप बहन भाई और इनके साथ ही जो मेरा करीब तरीन दोस्त होगा उसी से मैं शेयरिंग करूंगा ना। एक सवाल ऐसे जहन में आता है कि एक शख्स है जिसका दिन रात उठना बैठना ही दीनी माहौल में है, तो अगर कोई दीनी अचीवमेंट करता है या उससे कोई नेकी का काम होता है, अगर वो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयरिंग करता है तो क्या ये भी रियाकारी होगी या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसकी भी कोई पॉजिटिव साइड हो सकती है, या जैसे हम अमूमी तौर पर तो यही सुनते हैं कि कोई भी अगर दीनी काम हुआ अचीवमेंट हुई नवाफिल अदा करता है तहज्जुद पढ़ता है या कोई तहरीर का काम उसने कर लिया, तो क्या दोस्ताने में ये बातें करना आपस में इसकी कोई गुंजाइश होगी या यहाँ नहीं करनी चाहिए?
इस तरह की जितनी भी चीज़ें ना आप रियाकारी बोलें या खुद पसंदी कहें या हुब्बे जा कहें या हुब्बे मदाह तारीफ पसंद करना कहें, इन सब का दारोमदार होता है इंसान की नीयत पे। ठीक है, ये सब दारोमदार नीयत के ऊपर है। नीयत अच्छी है तो ये भी मुमकिन है कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा आपका कसीदा पढ़ रहा है, सामने बैठा हुआ बंदा कसीदा पढ़ रहा है हमारा, हमारी शान में पूरा अशआर लिख के बैठा हुआ है और वो पढ़ के सुना रहा है, और ये भी जायज और ये भी सवाब का काम। कैसे? पढ़ने वाले की नीयत जो है वो ये है कि वो दूसरे मुसलमानों को इस नेक शख्स की तरफ माइल करें ताकि वो इससे दीनी फायदा उठा सके, और ये जो सुनने वाला है जिसकी तारीफें की जा रही ये इसलिए सुन रहा है कि इसकी वजह से लोग उसकी तरफ माइल होते हैं तो ये इसकी बात उनको ज्यादा उनके लिए ज्यादा मौसर साबित होगी, ज्यादा असर करेगी। तो आप देखें कि ज़ाहरी एतबार से कितनी जो है ना वो एक अजीब चीज है, लेकिन उसके अंदर भी अच्छा पहलू मौजूद है। तो रियाकारी और हुब्बे जा ये जितनी चीजें हैं इनमें हर एक के साथ कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू जुड़ा होता है, यानी कि नीयत से उसका फर्क हो जाता है। तकब्बुर और वकार ये दोनों करीब करीब होते हैं। एक आदमी बावकार अंदाज में रहता है, ठीक है, उसके अंदाज में लुफराना बन नहीं है,
सही।
लेकिन हो सकता है कि देखने वाला बोलेगा कितना मुतकब्बिर आदमी, ये उसकी गलती है,
सही।
इस आदमी का वकार है, ठीक है। तो रियाकारी एक आदमी ये समझ रहा है कि इसने अपना अमल इसलिए बताया कि इसको नेक समझा जाए, ये रियाकारी है,
सही।
और एक आदमी ने किसी दूसरे को इसलिए बताया कि उसे भी तरगीब मिले, ये सवाब का काम है। एक आदमी ने दोस्त को इसलिए बताया कि इसका दिल इसकी खुशी से खुश होगा, तो मैं इसका दिल खुश कर रहा हूं, तो मुसलमान का दिल खुश करने का जो सवाब है वो इसको मिलेगा। ठीक है, एक आदमी ने दूसरे को अपनी खुशी इसलिए बताई कि अल्लाह ने इसे नेमत अता फरमाई है और अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, तो ये कह रहा है कि मैं तहदीसे नेमत के तौर पे कि खुदा ने मुझ पर ये नेमत फरमाई है, मैं अपनी उस नेमत के बयान के तौर पे कि मेरे रब का मुझ पर यह करम है, मैं इस तौर पर बयान कर रहा हूँ। तो आप देखिए, रियाकारी की एक नीयत, लेकिन अच्छी तीन नीयतें, ठीक है, तहदीसे नेमत भी है, तरगीब भी है, मुसलमान का दिल खुश करना भी है, और बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। तो लिहाजा हमें कोई दीनी खुशी मिलती है या हमें कोई दूसरी खुशी मिलती है, अगर हम उसे शेयर करते हैं तो इसका दारोमदार हमारी नीयत पे होता है। अच्छा, और बाज़ औक़ात यूं कह ले कि नीयत मुबाह होती है, ना अच्छी ना बुरी कोई भी नहीं होती।
सही, शेयरिंग जस्ट फॉर
शेयरिंग। किसी आदमी के जन हज करके आया, अब वो हज का तस्किरा जो कर रहा है ना, वो रियाकारी के लिए कर रहा है ना, वो तहदीसे नेमत के तौर पर कर रहा, ऐसा तस्किरा के एक वो कर रहा है, तो ये भी सूरत हो सकती है। तो बहरहाल खुशियों में दूसरे को शरीक करना ये ज्यादातर पॉजिटिव चीज होती है।
नियत
गम में कम शरीक करें, खुशी में ज्यादा शरीक करें। जो बंदा दुखड़े ही रोता रहता है तो कुछ अरसे के बाद लोग उससे दूर हो जाते हैं, जिसके पास बैठ के आदमी फ्रेश होता है उसकी सोबत में बैठना लोग पसंद करते हैं।
आपने भी कोई दोस्त बनाया जमाने तालिब इल्मी में या जब?
दोस्त है तकरीबन हर जगह ही रहे हैं, मदरसे में पढ़े वहां भी थे, जामिया में पढ़े वहां भी थे, स्कूल में भी होते थे, लेकिन उस जमाने के अंदर दोस्त यूँ समझने के जैसे जस्ट एक रवाज दुनिया है कि दोस्त होते हैं, उस तौर पे थे, और बतौर खास यूं कि उसमें कोई बहुत सारी नीयतें शामिल की हों तो ना अच्छी ना बुरी, मोस्टली तो इसी तरीके से होता था। हाँ, जामिया का जमाना यूँ कह ले कि जरा एक सेंसिबल जमाना था, एक मेच्योरिटी का जमाना था, तो उसमें दोस्ती के लिए ये होता था कि भी उसे दोस्त बनाए कि जैसे या तो हम फायदा उसको दे सकें इल्मी एतबार से या उससे फायदा ले सकें, तो उस वक्त फिर दोस्तियों का अंदाज ये था। और अब जो है, अब जरा ज्यादा सिलेक्शन हो गई है, अब तकरीबन ऐसा ही होता है कि दोस्त उसी को बनाए कि जिससे या तो दीनी फायदा उठा सकें या दीनी फायदा उसको दे सकें।
दोस्तों के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
डिटेल्ड इसका आंसर है, जो जामिया में थे, स्कूल में थे, प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं रहे, अपने अपने घरों को सब चले गए, तो उम्र के साथ अकल का ये तकाजा होता है कि अब हर एक से दोस्ती ना की जाए।
सही,
तो वाकई बहुत ज्यादा चूजी हो चुके हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि पता नहीं सुनने वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे कि एक अरसा हो गया, अब तो कोई दोस्त नया बनाया ही नहीं।
सही,
उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि अब अगर बड़ा है तो उसके साथ एहतराम का ताल्लुक है, अगर छोटा है तो शफकत का ताल्लुक है।
शफकत का ही ताल्लुक होगा सबसे आपका, जितना आप अपनी उम्र के हवाले से कॉन्शियस होकर बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आप 70-80 से ऊपर हैं। अब दुनिया में शफकत की निगाह डालते जब भी डालते हैं।
क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे और दीनी माहौल की बहुत बड़ी बरकतें हैं। यकीन करें, जो लोग इस माहौल में नहीं है वो शायद किसी और नज़र से देखते होंगे, तो लेकिन हमने जो इस माहौल में देखा, बहुत कुछ देखा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखा, अच्छे दोस्त, खुशियाँ, यानी कि ये भी एक मसला हो गया फिर जमाना के लोग खुश तो होते हैं, कोई ऐसी खुशी का मौका तो होता है लेकिन शेयर करने वाला नहीं मिलता कि यार इसको बताएंगे तो नज़र ही मारेगा, उसने माशाल्लाह भी नहीं कहना या हसद करेगा। तो दीनी माहौल और अच्छा माहौल, उसके अंदर अच्छे दोस्तों का मिलना, ये बहुत हद तक जो है वो मुमकिन हो जाता है। और जब आप अच्छे माहौल में रहते हैं तो अल्लाह पाक भी आप पर ज़रूर करम फरमाता है। तो हमने कोशिश की
एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, मुझे बड़ी खूबसूरत हदीस याद आई। हदीस उमर में फरमाया कि अहबिब हबीबा का हौन अम्मा, कि दोस्त से दोस्ती करो लेकिन जरा हद के अंदर, हो सकता है कि किसी दिन दुश्मन बन जाए, और किसी से दुश्मनी करो तो एक हद के अंदर, हो सकता है किसी दिन दोस्त बन जाए। अच्छा, ये ऐसा हिकमत के जुमला है ये कि ना तो दोस्ती में एक्सीड द लिमिट होना चाहिए और ना दुश्मनी के अंदर ऐसा होना चाहिए। दोस्ती के अंदर क्लोज हो के इस कदर करीब हो गए कि अब दूर होने के बाद जो है ना दोस्ती को याद करना भी जो है ना बंदे के लिए मुश्किल हो जाए।
ठीक है, और दुश्मनी के अंदर इस कदर आगे निकल गए और इस कदर जो तबर्रा और बुरा भला कहना करना था वो किया कि अब दोस्त हो भी जाए तो शीशे में वो दराड़ें डाली हुई हैं कि जो कभी मिटी ना सके। तो लिहाजा इसमें एतदाल के साथ रहना चाहिए। बास लोग बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हैं और बास लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं। इसका ताल्लुक ज्यादातर मिजाज के ऊपर होता है, लेकिन दोस्तों की कसरत और किल्लत इसमें भी एतदाल होना चाहिए। ना तो ये है कि दुनिया में एक ही दोस्त है, वो नहीं है तो बंदा फारिग, और ना ये है कि इतने दोस्त हैं कि बंदा जो है ना टाइम दे पाता है और ना अपनी जिंदगी के काम कर पाता है।
सही।
इसी तरीके से फिर जिससे दोस्ती है उससे दोस्ती जो है वो खुशगवारी के अंदर ही रहे, वो खुशगवारी से आगे जाके ज्यादा ही आगे ना निकल जाए। और इसी तरह कभी किसी से जो है वो अनबन हो गई है तो उसके अंदर भी अगर जरा जबान को लिमिट में रखें तो इंसान हमेशा बेहतर है।
बहुत एक और चीज इसमें ऐड करनी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अक्सर लोग मौलवी हजरात को दोस्त बनाते फिर डरते हैं, यार इनसे दोस्ती करेंगे यार ये की बात करेगा,
मारेंगे,
ये नहीं मस्जिद ले जाएगा, बोलेगा नमाज पढ़, ये कर, तो ये क्यों बोले, ये चुप रहो, ये नहीं बोलना तुम्हें, ये क्यों यार तुमने तो कुफर बोल दिया। तो मतलब इतना ज्यादा वो उसको जो है ना वो प्रेशराइज करेगा, यार मौलवी इनसे दूर भागो। तो मैंने उनके मीडिया के दौर के भी जो दोस्त थे, बाकी भी दोस्त थे, और जो मैंने अब जो प्रेजेंट में भी जो दीनी माहौल में जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही होती है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है।
यानी वो डर आपको नजर नहीं आया,
वो
जो
डर
लोगों
नहीं
में
आया जो लोगों में होता है। और तो मैं आम लोगों को एक मैसेज इसमें देना चाहूंगा कि दीनी लोगों के साथ जो है वो दोस्ती करनी चाहिए।
मैं इसको यूं कंक्लूड करूंगा कि जो एक खामखा का लोगों ने अपने ज़हन पर एक तखयुलाती एक जो चीज बनाई हुई है ऐसा नहीं है, और ये टॉपिक अलग हो जाएगा। वरना अगर कोई आलम दीन आपका दोस्त होता है, कोई नेक शख्स है जो अल्लाह का नाम लेने वाला है, ये तो बहुत बड़ी सआदत की बात है। उससे कोई और फायदा हो या ना हो, लेकिन उसका आपके करीब होना या आपका उसके करीब होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। मुसलमान से बात करें जा रहे, और इस पर तो फिर बहुत सारा कलाम है, कभी मौका हुआ तो प्रोग्राम करने की सआदत मिलेगी। मदनी चैनल देखते रहिए, ईद की खुशियों में अपने साथ दूसरों को भी शामिल रखिए। अल्लाह पाक आपको हम सबको दिनों दुनिया की बरकतें अता फरमाए, जहान में भी खुशियाँ नसीब फरमाए और आखिरत में भी खुशियाँ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, ईद का दिन है, ईद का दिन है।